पेश है आज के मुख्य समाचार वृषाली जैन के साथ। तस्मानिया में हुए स्कूल हादसे से प्रभावित परिवारों और तस्मानियाई समुदाय के लिए प्रधानमंत्री ने की $8 लाख की मानसिक स्वास्थ्य सहायता की घोषणा। भारत में 36,000 करोड़ की लागत से बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। और ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एश बार्टी और डिलन एलकॉट बने संयुक्त न्यूकॉम मेडल विजेता। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तस्मानिया में हुए स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले 5 बच्चों के परिवारों के प्रति संतावना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इस दुख को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तस्मानिया के एक स्कूल में लगा जंपिंग कासल हवा के तेज झोंके की वजह से 10 मीटर ऊंचाई तक उड़ गया था। इस हादसे में 5 बच्चों की जान चली गई थी और 3 की हालत अब भी गंभीर है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे से प्रभावित परिवारों और समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य सहायता और काउंसलिंग के लिए $8 लाख के फेडरल राहत कोष की घोषणा की है।
We think of the entire community that is just heaving with sorrow. As I said yesterday, there are no words, only prayers for our fellow Australians in Tasmania and for the community that will carry this burden. And it will be a heavy burden. It will weigh them down. But I want to say to them, whether they're the first responders, the teachers, the friends, the family, the PNC at Hillcrest, the whole community, that Australia is one with them.
तस्मानिया ने आगामी सूचना तक राज्य के सभी स्कूल और मनोरंजन पार्कों में बाउंटी कासल के प्रयोग को वर्जित कर दिया है। उधर न्यू साउथ वेल्स में आज फिर एक बार सर्वाधिक दैनिक कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आज 2,482 मामले दर्ज किए गए, साथ ही एक कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई है। वहीं विक्टोरिया में आज 1,504 मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में 7 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े तब आते हैं जब दोनों राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को अब कोरोना जांच के नतीजे आने तक 72 घंटे के लिए संगरोध नहीं करना होगा। इसकी जगह पूर्ण टीका पा चुके आगंतुकों को आने के 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना जांच करानी होगी और नेगेटिव नतीजे आने तक ही एकांतवास करना होगा। ये नए नियम मंगलवार से लागू होंगे। उधर क्वींसलैंड में आज से सार्वजनिक परिवहन और रिटेल व्यवस्था में मास्क फिर अनिवार्य कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब 90% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पार कर लिया है। देश में अब 16 साल से अधिक उम्र के 90% आबादी को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया अब OECD देशों में शीर्ष 10 सर्वाधिक टीकाकृत देशों में एक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पॉल केली का कहना है कि टीकों की 3 खुराकें ओमिक्रॉन वेरियंट के खिलाफ लगभग उतनी ही सुरक्षा देती हैं जितनी टीके की 2 खुराकें डेल्टा वेरियंट के खिलाफ देती हैं। पर साथ ही उनका यह भी कहना रहा कि बूस्टर खुराकों की समय अवधि में सुझाए गए 5 महीनों में कोई भी बदलाव नहीं है। इसी बीच स्वास्थ्य अधिकारियों ने जोर देकर ये कहा है कि बूस्टर खुराकों और जनवरी में 5 से 11 साल के बच्चों के टीकाकरण शुरू होने के बाद बढ़ने वाली टीकों की मांग को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त खुराकें हैं। राष्ट्र में कोरोना टीकाकरण अभियान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल जॉन फ्रिवन का कहना है कि आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं होगी।
And I do want to assure everybody that there is absolutely no concerns with supply, and we are working with all of the GPs and pharmacists and the states and territories to ensure that there is the appropriate distribution to make sure that we can meet demand as people become eligible.
अगर आप अपनी सालाना छुट्टियों को कोरोना की वजह से जोड़ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। नए आंकड़े सुझाते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई कामगारों ने इस साल रिकॉर्ड सालाना छुट्टियां एकत्रित की हैं। रॉय मॉर्गन द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि 8.1 मिलियन वेतनभोगी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने सितंबर माह तक कुल 185 मिलियन दिनों की छुट्टियां एकत्रित की हैं। ये पिछले साल से लगभग 23% ज़्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह डेल्टा वेरियंट और पूर्वी राज्यों में लगे लॉकडाउन माने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई जनता 2 साल से विदेश यात्रा ना कर पाने की वजह से अब इन यात्राओं के लिए बेताब है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए वे कर्जा भी ले रही है। यात्रा कंपनी लग्जरी एस्केप्स ने एक सर्वे में पाया कि 10 में से 9 ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने या तो 2022 की यात्रा बुक कर ली है या करने वाले हैं। 1200 व्यक्तियों के इस सर्वे में पाया गया कि लोग इन यात्राओं में औसत से अधिक खर्चा करने को भी तैयार हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कई यूरोपियाई देश एक बार फिर यात्रा और सामाजिक दूरी के प्रतिबंध लागू करने वाले हैं ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। यूरोप भर में कोरोना मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें साल भर के त्योहार पर फिर महामारी का खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटानी सरकार ने देश में ओमिक्रॉन के प्रभाव और 93,000 मामले सामने आने के बाद एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। यह तब आता है जब एक बड़े शोध में पाया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में दोबारा संक्रमण का खतरा डेल्टा वेरिएंट से अधिक है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के इस शोध में पाया गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कमजोर नहीं है। मध्य इंग्लैंड में इंटेंसिव केयर कंसल्टेंट डॉक्टर शमीर गोपाल इस बात से सहमत हैं।
So all of the meetings that we've attended insofar as the network is concerned where modeling is taking place, the message is clear that this looks like it's the calm before the storm.
उधर रूस का कहना है कि वे कानूनी गारंटी चाहता है कि नाटो मध्य यूरोप और यूक्रेन में कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं करेगा। ये उस इच्छा सूची का हिस्सा माना जा रहा है जो रूस पश्चिम के साथ समझौते में चाहता है। रूस ने अपूर्ण सुरक्षा दस्तावेज जारी कर अमरीकी नेतृत्व वाले नाटो समूह से मांग की है कि वे ना ही किसी नए सदस्य को समूह से जोड़ें और ना ही किसी पूर्व सोवियत देश में सैन्य बेस स्थापित करें। अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव जेक सलिवान का कहना है कि उनका देश रूस से बातचीत के लिए तैयार है।
Diplomacy with Russia from the point of view that, you know, meaningful progress at the negotiating table, of course, will have to take place in a context of de-escalation rather than escalation, that it's very difficult to see agreements getting consummated if we're continuing to see an escalatory cycle.
और अब खबरें भारत से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में तेज गति से संपर्क प्रदान करने को लेकर प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रही। करीब 594 किलोमीटर लंबा व 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगी। एक्सप्रेसवे पर एक औद्योगिक गलियारा और ट्रॉमा सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। उधर मुंबई में एक 29 साल के युवक जो न्यूयॉर्क से देश लौटे थे ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनमें ना ही कोरोना के कोई लक्षण दिखे और वे फाइजर वैक्सीन की 3 खुराकें भी पा चुके थे। एयरपोर्ट पर ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दी गई थी। अब इन युवक को एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और इसी के साथ मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित लोगों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 13 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं पूरे महाराष्ट्र राज्य में इस वेरियंट से प्रभावित लोगों की संख्या 40 हो गई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.38 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एश बार्टी और डिलन एलकॉट को संयुक्त रूप से न्यूकॉम मेडल विजेता घोषित किया गया है। न्यूकॉम मेडल ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों को हर साल इस खेल में उच्चतम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह एश बार्टी को लगातार चौथे साल मिला है। यह तब आता है जब उन्होंने अपना पहला विंबलडन विमेन सिंगल्स खिताब जीतकर विश्व नंबर एक का पायदान हासिल किया है। उन्होंने अपने साथी डिलन एलकॉट की तारीफ करते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन इस साल कमाल का रहा है।
He's the only person to achieve a Golden Slam, and I think it's pretty cool to share that with him after what's been a really incredible year for us as well, and a really rewarding, tough year, but I certainly wouldn't change any of it.
और अंत में एक नजर कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप है। यहाँ अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल बारिश की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल तेज हवा और बारिश के साथ तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में हल्की बारिश के साथ तूफान आ सकता है। अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल बरसात या तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तेज धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ठंड की दस्तक पड़ चुकी है। दिल्ली में कल धूप ही धूप है और अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।